हरि ओ जय जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आप लोग कपिलोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। मय्य अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। संतों के लक्षण का वर्णन करते हुए कि ऐसे संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, भगवान कपिल कहते हैं मय्य अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां, जो मेरे प्रति अनन्य भाव रखते हैं, अनन्य भाव रखते हुए भक्ति करते हैं, दृढ़ भक्ति करते हैं। दो चीजें बताई, एक मेरे प्रति अनन्य भाव है और दूसरा दृढ़ भक्ति है। उस भक्ति में अदृढ़ता नहीं है और चाहत में अनन्यता है, ये दोनों चीजें। अनन्य का मतलब क्या है? अनन्य का मतलब ये नहीं है कि आप राम को चाहो और पूजा करो तो कृष्ण को उठा के बाहर फेंक दो, यह अनन्यता का मतलब है। कई लोग ऐसा समझते हैं, कईयों के मन में आता है कि हम तो अनन्य हैं तो दूसरों को गालियां दो, यह अनन्य नहीं। आप अपने बेटे को बहुत चाहते हो, इसका मतलब यह थोड़ी कि दूसरे अगर कोई बच्चे आ जाए तो उनको निकाल के बाहर फेंक दो या उनको डांटने लगो या पीटने लगो। अपने बेटे की चाहत का मतलब ये नहीं कि दूसरे तुमको बुरे लगने लगे। अनन्य का मतलब है कि जहां एक में समर्पण हो, अथवा अनन्य का मतलब है जहां एक ही को आप जानते हो कि वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। अनन्य का मतलब है कि आपने एक को ही जाना है। अगर कोई दूसरे की चर्चा करता भी है तो आपको लगता है कि वो वही जिसे हम चाहते हैं उस रूप में आ गया। कृष्ण की निंदा करना अनन्यता नहीं है। राम की पूजा करने वाले को, कृष्ण की पूजा करने वाले को शिव की निंदा करना अनन्यता नहीं है, बल्कि शिव के रूप में भी वही है ये भाव पैदा अगर हो, यदि हो तो अनन्यता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, भगवान राम के प्रति अनन्य भाव है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने दूसरे के स्तुति में पद नहीं लिखे। विनय पत्रिका में आप देखो उन्होंने सबकी स्तुति किया, गणेश जी की किया और शिव जी की किया और भी जितने भी भगवान हम जानते हैं परिचित हूं सबकी आराधना किया, सबका स्तवन किया। लेकिन बड़ी अच्छी बात की कि आराधना स्तुति वे किसी की भी करें, स्तवन किसी का भी हो, लेकिन अंत में कहते हैं कि मुझे परमात्मा भगवान श्री राम के प्रति आप भक्ति दें यही हम आपसे मांगते हैं। ये भी अनन्यता का कितना सुंदर उदाहरण, कि पूजा हमने सबकी की, आराधना सबकी की, स्तवन सबका किया, और बाद में उनसे मांगा कि हमें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें वही चाहिए कि भगवान श्री राम के चरणों में हमको निर्मल भक्ति प्रदान करो, यही हमें चाहिए। ये भी अनन्यता है। लेकिन सबसे बड़ा अनन्यता का जो हमें अर्थ मालूम पड़ता है वो ये मालूम पड़ता है कि भगवान को छोड़ करके हम भगवान से कुछ न मांगे, ये अनन्यता है। हम न जाने कहां अटक जाते हैं, न जाने कहां भटक जाते हैं, न जाने कहां विभ्रमित हो जाते हैं कि अनन्यता का मतलब ये है, अनन्यता का मतलब ये है। लेकिन हमें सीधा सा अर्थ जो मालूम पड़ता है वो ये है, अनन्य का मतलब है कि भगवान से, भगवान को छोड़कर के कुछ न मांगे, यही अनन्यता है। अगर भगवान से, भगवान को छोड़ के कोई आराधना, कोई अभिलाषा हमारे मन के अंदर में है, कोई इच्छा अगर हमारे मन के अंदर में है, तो हमें लगता है कि भगवान से ज्यादा हमने उस पदार्थ को महत्व दिया, भगवान से ज्यादा हमने उस चीज को महत्व दिया जिस चीज को हमने भगवान से मांगा। यहां पर भी थोड़ा सा हम दो पक्ष देखेंगे, एक है निष्काम भक्त और एक है सकाम भक्त। तो जो निष्काम है वे तो इस अर्थ में बिल्कुल फिट बैठेंगे, जो निष्काम है वे तो बिल्कुल सही है कि भगवान को छोड़कर के भगवान से क्या मांगना, इसलिए वो परमात्मा के प्रति संसार की कोई अभिलाषा नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान भी ऐसे भक्तों की, ऐसे जो साधक उनके पास में आते हैं, वो हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन दूसरे जो हैं, जो भगवान को सकाम भक्त हैं, जो भगवान से कुछ न कुछ अभिलाषा भी करते हैं, चाहते भगवान को हैं, पूजा भगवान की करते हैं, लेकिन वे भी अगर संसार की कुछ कामनाएं हों, संसार की कुछ इच्छाएं हो, तो उन इच्छाओं को भगवान से मांग लेते हैं, अथवा दूसरी कोई अभिलाषा हो तो वे अपनी बात को कह देते हैं, तो क्या वे अनन्य नहीं है? तो संतों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ एक सुधार करना होगा कि वे भी अनन्य के अंतर्गत आएंगे। अगर संसार में दूसरी कोई स्थान पर, दूसरे किसी जगह पर उनकी वो प्रवृत्ति नहीं है, आश्रय नहीं मानते हैं भगवान को छोड़ करके, और किसी के प्रति उनकी श्रद्धा या और कहीं आश्रय नहीं है, उनके मन में निष्ठा नहीं है, तो फिर अगर वे भगवान से भी कुछ मांग लेते हैं तो उनको भी आप अनन्य ही मानना। क्यों? मैंने महाराज जी को पढ़ा और बहुत अच्छा लगा कि अगर मान लीजिए कि आपका बेटा हो और आपको बहुत मानता हो, आपकी बहुत पूजा करता हो, लेकिन पूजा करने के बाद, मानने के बाद भी जब उसे किसी पदार्थ की जरूरत हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, तो वो पड़ोसी के घर से जाकर के मांगे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं समझ में आइएगा? ये भी तो अनन्यता है। अनन्यता का मतलब तो ये हुआ, अनन्य भाव का मतलब तो ये हुआ कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसी से तो मांगे, और कहां जाए मांगे? अगर तुमसे नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? अगर हम अपनी बात, अपने मन का भाव तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? इसलिए सीता जी देखो, भगवती प्रकट हुई है लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में, और वे भी जब भगवान श्री राम को पति के रूप में चाहती हैं तो वो दौड़ के गई पूजा करने गौरी के मंदिर में। आप रामायण पढ़ना चकित हो जाएंगे आप कि उन्होंने पहले पूजा कर लिया था, पूजा करने मंदिर में पहुंच गई थी, जब सखियों ने बताया कि कोई राजकुमार आए हैं देखो चल के, तो वे पूजा ही कर रही थी, और पूजा करने के बाद में दौड़ी, और जब श्री राम को देखा तो देख करके चकित रह गई। अब उनके मन में आया कि ये तो गड़बड़ हो गया, पूजा तो हो गई है तो अब क्या करें, तो फिर दोबारा फिर वापस गई और वापस पहुंच करके और वहां अभिलाषा किया है कि बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब यहाँ दो बातें हैं कि एक तो वे भगवती हैं और जानती हैं कि राम आए हैं तो वो उनको मिलेंगे ही पति के रूप में, ये दूसरे के साथ में उनका विवाह होने वाला नहीं है, धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं, इस बात से वे परिचित हैं, फिर भी उनके मन में डर है, तो अपने डर को दूर करने के लिए भगवती की आराधना करती हैं और पूजा करती हैं। और दूसरी बात, वे एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुई हैं, तो मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं उसका भी वो प्रदर्शन कर रही हैं, दिखा रही हैं कि हमारे मन में भी ऐसे ही भाव पैदा होते हैं, हमारे मन में भी ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं। तो अगर सीता जी गौरी के सामने जाकर के और पति की अभिलाषा करती हैं कि राम ही उनके पति के रूप में मिले उन्हें, तो फिर हम और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते, भगवान से प्रार्थना के लिए क्यों नहीं कह सकते? कहने में बुराई मुझे नहीं लगती है। आप निष्काम हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर में कोई कामना है तो उस कामना को भगवान से कहने में फिर क्या मतलब है? नहीं कहने का क्या मतलब है? मुझे तो लगता है कि कह ही देना चाहिए ताकि भार लिए लिए न घूमो कि भगवान से कह नहीं सकते, दुनिया से बोलना पाप समझा जाता है तो जाएं कहां। हाँ, वो कामना मन में पड़ी रहे और बाद में परेशान करती रहे, इससे अच्छा है कि बोल दो। हाँ हाँ, ये पक्का है कि अगर भगवान से नहीं बोलना है तो किसी से मत बोलो। अगर वो भगवान से नहीं कह पाते हो, कहने का सामर्थ्य नहीं है, अथवा निष्काम बनना चाहते हो, तो निष्कामता का अर्थ है कि तुम्हारे मन में कामना ही पैदा न हो, तुम्हारे मन में कामना को फलीभूत करने की अभिलाषा ही न हो कि हमारी कामना पूरी हो जाए, ऐसी कामना मन में न हो, तब तो आप निष्काम हो। लेकिन कामना अगर पैदा हो तो वो भगवान से ही कह देने में भलाई है, संसार से उसकी अपेक्षा मत करो। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को छोड़ करके संसार के पदार्थों के या संसार के किसी व्यक्ति के पास में हम जाएं, इससे अच्छा है कि भगवान से ही कहो, तो भी अनन्यता हम मानते हैं और कहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम भगवान को अनन्य माने, लोग कहते हैं कि परमात्मा के प्रति अगर अनन्यता का भाव हो, अनन्य शब्द का मतलब क्या है? एक घटना हमको याद आ गई, वो जरा बता दूं आपको, फिर आगे बोलता हूं। किसी ने कल्पना किया, शायद महाराज जी की ही पुस्तक में या मैंने कहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, कि लैला मजनू की आपने कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो किसी की कल्पना है, कवि की कल्पना, लेकिन बड़ी प्यारी, कि मजनू मर गया और मरने के बाद भगवान के पास गया, तो भगवान ने मजनू से कहा कि तुम जीवन भर लैला लैला चिल्लाते रहे, क्या मिला तुमको? कुछ नहीं मिला, खत्म हो गया जीवन। अच्छा होता कि जितना तुमने लैला को चाहा और उसका नाम लिया तो हमारा नाम लेते, उतना ही प्रेम तुम अगर परमात्मा का करते, परमात्मा से करते, भगवान का नाम लेते, तो आज तुम्हारी कितनी ख्याति होती, तुमको कितना आनंद होता, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा कल्याण हो गया होता। लेकिन आज तुम्हें क्या मिला? तो मजनू ने कहा कि मैं कुछ बोलूं? तो कहा गया कि हाँ बोलो। तो उसने कहा कि मैं भगवान को जरूर चाहता, भगवान की जरूर पूजा करता, भगवान का नाम जरूर लेता अगर वो लैला के रूप में होता। क्या बात, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। यह है अनन्यता का भाव, कि तुम्हारे सामने सारे लालच बेकार हो जाए, तुम्हारे सामने दुनिया की कोई भी प्रतिष्ठा छोटी मालूम पड़ने लगे, अगर तुम भगवान को चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो। और बताएं, हम बड़प्पन को देखते हैं, हम प्रतिष्ठा को देखते हैं। ये बात आपने सुनी होगी कि गोस्वामी जी को किसी ने कहा कि आपके राम तो 12 कला के अवतार हैं और भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, तो आपके तो भगवान छोटे हुए, कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, बड़े हुए, और आप चकित रहेंगे कि तुलसीदास जी इस बात से दुखी नहीं होते, तुलसीदास जी घबराते नहीं है, वे तो उछलने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तुमने क्या कहा, भगवान हमारे 12 कला के अवतार हैं, हम तो सोचते थे कि वो राजा के लड़के हैं, हम तो उन्हें आदमी समझते थे। अच्छा किया कि तुमने बता दिया कि वे 12 कला के अवतार हैं। तो आपके मन में वहां छोटा और बड़ा और प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान ये महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये होता है भक्त के अंदर में कि वो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है। और जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, शास्त्र उसे पहले ही अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक कहते हैं, सबसे बड़ी सत्ता मानते हैं। और उस भगवान से प्रेम करने के बाद हम कहीं दूसरी जगह अपने आश्रय ढूंढे, हम अपने दूसरी जगह कहीं मन को लगाएं, तो फिर ये अनन्यता का खलल यहां पड़ता है। अनन्यता की आपूर्ति जो होती है, विघटन जो अनन्यता का होता है, वो यहां होता है कि भगवान को छोड़ करके हम दूसरी जगह आश्रय लगाते हैं। अगर भगवान को अनन्य मानो तो मुझे लगता है कि जितने भी साधन ऊपर कहे या आगे और आए या कोई दूसरे और साधनों की प्रक्रिया लोग कहें, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक भाव अगर मन में पैदा हो जाए, मुश्किल हमारे साथ में यही होती है कि हमारे अंदर में वो भाव पैदा हो नहीं पाता। हाँ, और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये होता है, हमें भी नहीं पता चले, मान लो कि अंदर में क्या हो रहा है, कैसे हो अनन्य भाव। कई लोग कहते भी कि आप इतना बता दीजिए कि परमात्मा के प्रति समर्पण होता कैसे है, उनका ये मुश्किल है बताना, ये कैसे बताएं, ये कहा नहीं जा सकता, ये अपने आप ही हो। एक प्रेमी अगर किसी को चाहने लगे और उससे पूछो कि तुम जो इसको चाहते हो कैसे चाहते हो वो जरा बताओ, तो कैसे बताएगा वो, बताने के लिए उसके पास कोई माध्यम नहीं है। हम अगर अपनी माँ को चाहते हैं, हम अगर अपने पिता को चाहते हैं और आपसे पूछें कि आप अपने माँ बाप को कैसे चाहते हो जरा बता दो, वो प्रेम, मैं तो कई लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हमको बड़ी याद आती, मान लीजिए गांव से कोई व्यक्ति आता है, शहर में आता है, और दो दिन के बाद में ही वो उसको गांव की याद सताने लगती कि हमको वापस जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए, आपको याद कैसे आती है अपनी माँ की, आपको याद कैसे आती है अपने घर की, कि बस दो दिन रुके और याद आने लगा कि हम घर जाएं, ये जरा समझा दीजिए। तो कहा नहीं, बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। परमात्मा के प्रति समर्पण हो कैसे ये बताना मुश्किल है। हाँ, जिन्होंने समर्पण किया है उनकी कहानियां हमारे सामने है, उनको देख करके शायद तुम कुछ सीख लो, उन कहानियों को देख करके शायद हमारे मन के अंदर में ये भाव पैदा हो कि समर्पण शायद इसे कहते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ सुन सकते हो, वो भी सिर्फ कल्पना कर सकते हो कि ऐसा होगा, शायद तुम्हारे द्वारा कुछ और घटित हो, तुम्हारे द्वारा कुछ और तरह से समर्पण हो, हा? कोई दूसरी क्रिया से घटित हो। क्योंकि ध्रुव ने जब समर्पण किया तो एक अलग तरीका था, प्रहलाद ने जब समर्पण हुआ प्रहलाद का तब वो तरीका अलग था, मीरा के समर्पण का तरीका अलग था, नरसी के समर्पण का तरीका अलग था। तो एक दूसरे से ये कहानियां मिलती नहीं है, एक दूसरे से ये जीवन मिलते नहीं है, तो आपको और हमको कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें। अच्छा, समर्पण कोई क्रिया नहीं है कि आप गए और सीधे लेट गए और हो गया समर्पण। समर्पण तो एक भाव है मन का, समर्पण तो मन का एक चिंतन है, हा? कि बस परमात्मा का वरण कर लिया, हो गया। जैसे एक पत्नी ने अपने पति का वरण किया, वो एक की हो गई, अब उसके मन में किसी दूसरे का ख्याल नहीं आता, और अगर आता है तो क्या वो पतिव्रता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि के अंदर हमने एक समर्पण किया, भगवान का चिंतन, भगवान के प्रति समर्पण अपनी बुद्धि का कर दिया, और उसके बाद अगर उस बुद्धि के अंदर में सुख को प्राप्त करने के लिए संसार के अन्य पदार्थों का चिंतन होता है, तो भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये व्यभिचारिणी बुद्धि है जो तरह तरह के पदार्थों में अनुरक्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रुक्मिणी जी इसी बात को कहती हैं कि महाराज, जो सत्वगुणी बुद्धि है उसने तो आपका वरण कर लिया, उसने तो आपको, क्योंकि भगवान ने वहां कहा ना कि अगर तुम्हारे मन में इच्छा हो, तुम्हारे मन में कामना हो, तो अभी भी हम अपने वर को बता दो तो तुम्हारा विवाह करवा दे, ऐसा भगवान ने छेड़ा है थोड़ा रुक्मिणी जी को वहां। तो रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान, हाँ, रुक्मिणी विवाह के बाद, तो रुक्मिणी जी को लगा कि शायद हमसे कोई भूल हुई है कि भगवान हमको छोड़ने वाले हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो वो तो बेहोश होगी। बाद में भगवान ने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, हमने तो सिर्फ मजाक किया था। तब रुक्मिणी जी ने जो जवाब दिया है वो बहुत अच्छा दिया, और जवाब सब कुछ कहने के बाद भी उन्होंने अंत में कहा है कि आप कहते हो कि मैं किसी दूसरे का वरण कर लूं, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जितनी भी शुद्ध बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, वे आपका वरण करती है एक बार, उसके बाद में उनके मन में किसी दूसरे का ख्याल ही नहीं आता, यह अनन्यता है। तो हमने आपका एक बार वर्ण कर लिया, अब हमारे मन में दूसरे का किसी का ख्याल नहीं आता। और देखो, परमात्मा एक है, वृत्तियां पत्नियां 16,000, तो यहाँ 16,000 नहीं, 16 लाख 16 करोड़ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वृत्तियां, ये बुद्धि है, बुद्धियां कितनी भी हो सकती हैं, बुद्धि एक नहीं है, अलग अलग लोगों में अलग अलग बुद्धि है। तो प्रत्येक बुद्धि का ये कर्तव्य भी है और प्रत्येक बुद्धि को ये अधिकार भी है कि अपने वरण के रूप में परमात्मा का वरण कर ले, अपने पति के रूप में परमात्मा का वरण कर ले, पति को प्राप्त कर ले। लेकिन पत्नियां, पति जो है अनेक पत्नियां रख सकता है, लेकिन पत्नियां अनेक पति नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पति और पत्नी एक उदाहरण के द्वारा ये समझाया गया कि पति के रूप में आप परमात्मा को मानो। संसार में जो प्रचलन हो गया वो गलत हुआ, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोगों ने उस बात को गलत अर्थों में ले लिया, लेकिन मूल अर्थ यह है कि पति कौन, यानी परमात्मा। भगवान, तो भगवान तो अनेक नहीं हो सकते, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि भगवान अनेक है, परमात्मा तो एक ही है। तो एक परमात्मा के प्रति अनेक बुद्धियों का समर्पण संभव है, और अनेक परमात्मा, अनेक बुद्धियों को अगर परमात्मा स्वीकार करता है तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती। तो शुद्ध सात्विक बुद्धि तो एक भगवान को ही चाहती है, मई अनन्यन भावेन, मुझे अनन्य भाव से चाहता है। अब अनन्य भाव से जब आप परमात्मा को चाहोगे, दूसरे के प्रति आश्रय भाव नहीं रखोगे, तो लोग कहते हैं कि हमने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, भगवान का स्तवन शुरू कर दिया, तो क्या भगवान हमारा ख्याल करेंगे, भगवान हमारे जीवन का ख्याल करेंगे? तो कहा, अजीब आदमी हो, जो लोग संसार में कमा नहीं सकते, श्रीमद् भागवत में ही आता है कि धृतराष्ट्र ही था ना, दुर्योधन का पिता, पांडव विजयी हो गए, दुर्योधन पराजित, कौरव पराजित हो गए और राजा युधिष्ठिर हुए। विदुर जी ने तो पहले ही कह दिया था,
कि ऐसा होगा। और विदुर जी ने यह भी कहा था कि जिस दिन ऐसा होगा मैं आऊंगा वापस लौट करके। वापस आए तो धृतराष्ट्र रोने लगे। तो विदुर जी ने कहा, आप रोते क्यों, परेशानी किस बात की, क्या युधिष्ठिर आपका सम्मान नहीं करते? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, सम्मान तो करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि हमारी बेटी भी न करते। हाँ, और हमारे बेटे तो क्या करते, ये युधिष्ठिर अपने पिताजी का भी इतना सम्मान नहीं करते जितना कि वो हमारा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो बोले, फिर क्यों रोते हो? कहा, युधिष्ठिर तो सम्मान करते हैं लेकिन भीम नहीं करते। हाँ, वो गालियां देते हैं, वो कहते हैं कि देखो इसको शर्म नहीं आती, हमारी ही रोटियां खाता रहा, हमारे ही खिलाफ साजिश रचता रहा और अब हमारी ही रोटी खा के जिंदा, इसको तो मर जाना चाहिए। तो विदुर जी ने कहा कि आपको भीम की बात बुरी लगती है? तो कहा, लगनी नहीं चाहिए। बोले, बिल्कुल नहीं, वो सही कहते हैं। हाँ, भीम गलत थोड़ी कहते हैं कि तुमने जिनके खिलाफ साजिश रची जीवन भर और अब उन्हीं की रोटियां खा रहे हो, तो वो अगर कहते हैं तो गलत क्या करते हैं? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि क्या करूं फिर? बोले, वो जो कहते हैं सही करो कि छोड़ के चले जाओ जंगल में। धृतराष्ट्र ने कहा कि चला तो जाता लेकिन एक समस्या है कि अंधा हूं, कुछ कर भी नहीं सकता हूं, खाऊंगा कैसे? आदमी को खाने की बड़ी चिंता है, फिक्र है, खाऊंगा कैसे? तो विदुर जी ने कहा कि तुम्हें अपने खाने की चिंता है, एक बात बताओ, संसार में कितने प्राणी हैं, चींटी से लेकर के और जंगल में कितने जानवर हैं, क्या उन सबका पेट तुम्हारे युधिष्ठिर भर रहे हैं? और जो उन जानवरों का, जो अज्ञान है उन जानवरों का पेट भर सकता है, खाने के लिए व्यवस्था कर सकता है, और वो परमात्मा तुम्हारा ख्याल नहीं करेगा, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? और कभी के उन शब्दों को याद करो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे, जब दांत नहीं थे तब दूध का इंतजाम कर दिया कि इनके पालन पोषण के लिए ऐसी चीज भगवान ने बना दी, हाँ, कि खा नहीं सकते, रोटियां चबा नहीं सकते, तो ऐसी चीज बनाओ कि पूरा पोषण हो जाए शरीर का। ये इतना ख्याल है तुम्हारे जन्म से पहले, इतना ख्याल है। हाँ, और मैंने सुना है कि एक महात्मा को भिक्षा लेने के लिए गुरुजी ने भेजा कि जाओ और तुम भिक्षा लेकर के आप भोजन करना। और भिक्षा लेने के लिए जब वो गया, उसे पहली बार जब पता चला कि भगवान ने तो ऐसी विचित्र माया रची है कि जन्म से पहले ही वो दूध बना देते हैं, तो उसने भिक्षा का पात्र वही पटक दिया। बोले, फिर भी हम चिंता करें खाने की? हा? फिर भी हम मांगने जाएं, उसे खिलाना होगा तो खिलाएगा, हम क्यों मांगने जाएं? हम संसार के लिए यत्न क्यों करें? बस निश्चिंत हो गए। तो क्या उस आदमी का पेट नहीं भरा होगा? आप कल्पना कर सकते हो पेट भरा होगा कि नहीं? मैं मानता हूं कि जरूर भरा होगा। आप एक बार कहके तो देखो, आप एक बार समर्पण करके तो देखो संसार के तुम्हारे काम कैसे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और समर्पण का इससे बेहतर और क्या, विश्वास तो आपके अंदर में पैदा हो। हम भगवान को मानते हैं लेकिन इतना विश्वास हमारे हृदय में पैदा नहीं होता, और जब विश्वास पैदा नहीं होता तो हम उसका चिंतन हमारा मन करेगा कैसे, ये बताओ। मैं एक कहानी पढ़ रहा था कल और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक राजपूत परिवार का एक लड़का विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था, नाव में बैठा और तूफान आ गया। उसी समय तूफान आया, ये निश्चिंत बैठा रहा आराम से मस्ती से, तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता तूफान आ रहा है, अगर हम डूब गए मर गए तो? राजपूत था, ठाकुर था, क्षत्रिय था, खड़ा हुआ, उसने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके उसकी गर्दन पर रख दी, नंगी तलवार ऐसे। तो गजब बात यह हुई कि जैसे उसने तलवार रखी, हंसने लगी। वैसे तो डर जाता आदमी, आजकल तो डर ही जाए, भले ही पति हो तो क्या हुआ, जहां तलवार रखी तो हंसने लगी। तो कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैंने तलवार रखा सिर के ऊपर, गले के ऊपर। तो कहा कि नहीं, डर नहीं लग रहा। तो कहा क्यों? बोले, तलवार आपके हाथ में, डरूं क्यों? कितनी बढ़िया बात, तलवार आपके हाथ में, मैं भयभीत क्यों हूं, मैं डरूं क्यों, मुझे भरोसा है कि आप मुझे नहीं मारेंगे। तो उसने कहा कि बस मुझे भरोसा है कि तूफान उसके हाथ में, मैं नहीं मरूंगा। कितनी विचित्र बात है, हा? जैसे तुम्हें विश्वास है हमारे ऊपर कि तलवार हमारे हाथ में, भले ही गर्दन पे हो लेकिन तुम मार नहीं सकते, अगर मारोगे तो भी उसमें भला है, तो भी उसमें कल्याण करेगा परमात्मा, ऐसी मुझे भी भरोसा है कि ये भले ही तूफान हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उसके हाथ में। इतना भी समय छोटा था, तब तो हमारे महर्षि ने एक कथा हमको सुनाई थी कि माता पिता गुरु ये भगवान, इनके ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि ये तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकते। एक छोटा सा शिष्य था और लेकर के जा रहे थे रास्ते में, तो रात हो गई। महाराज ने कहा कि छोटा बेटा है, थक जाएगा, कहां जाऊं अब, यहीं सो जाते। तो एक पेड़ के नीचे बढ़िया ऐसे सफाई किया और वहीं पर उस बच्चे को कहा कि तुम सो जाओ, अपने ब्रह्मचारी को वहीं सुला दिया। महात्मा सिद्ध थे, वो बैठ करके और भगवान का चिंतन करने लगे। रात हुई तो चांदनी रात थी, चंद्रमा का उजाला फैला हुआ था, सब नजर आ रहा था। रात को जब उन्होंने ध्यान करने के बाद नेत्र खोले तो देखते क्या, एक सांप आ रहा है सामने से। तो सांप को देखा तो महात्मा सिद्ध भी थे, उन्होंने उसको वहीं रोक दिया और उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सांप ने कहा कि महाराज आप हमें रोकिए मत, ये जो लड़का आपके साथ में ये सोया हुआ है ये पिछले जन्म का हमारा शत्रु है, तो मैं बदला लेने आया हूं और मैं इसका खून पीना चाहता हूं। तो महात्मा ने कहा कि तुम खून पीना चाहते हो, अगर खून हम निकाल करके दे तुम्हें तो, यानी तुम काटने जाओ इससे अच्छा है कि हम ही खून निकाल करके तुमको दे दे। तो सांप ने कहा हमें तो खून से मतलब है, चाहे मैं काटूं चाहे आप निकाल के दो, जब तक खून नहीं पी लूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे खून चाहिए। महात्मा ने कहा कि तुम ठहरो मैं खून निकाल के देता हूं। तो चाकू निकाला, कटोरी निकाला और पैर को ऐसे टटोलने लगा खून निकालने के लिए। तो सांप ने कहा कि नहीं नहीं, इसने मेरा गला काटा था तो मुझे गले का खून चाहिए, पैर का खून नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा ठीक है गले का देता हूं। अब गले में चाकू लगाए और वो जग जाए तो हानि है। तो महात्मा ने सोचा कि ये डरे नहीं हिले नहीं, इसके लिए वो उसके ऊपर बैठ गए गुरुजी। और जब ऊपर बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि लड़के की नींद खुलेगी। तो लड़के की नींद खुली, देखा हाथ में चाकू और गुरुजी ऊपर बैठे, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर ली। गुरुजी ने थोड़ा सा ऐसे काटा खून निकाल करके और सांप के सामने रख दिया, सांप खून पी करके चला गया। और जानते थे वो सिद्ध थे, जड़ी बूटी लेकर के गले में लगा दिया और सो गए। सुबह जब हुई तो वो शिष्य जब नहा धोकर के सामने आ गया तो गुरुजी ने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम जब रात में सोए हुए थे और मैं तुम्हारे छाती के ऊपर बैठा था चाकू लेकर के, तुमने आंखें खोली तो तुमने पूछा क्यों नहीं कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो। तो उस लड़के ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, बोले गुरुजी मेरी माँ ने मेरे से कहा था मैं जब छोटा था कि गुरु माता पिता ये जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, कभी अहित नहीं करेंगे। इसलिए वो विश्वास मेरे मन में था कि भले ही आप चाकू लिए हो, भले ही आप काट रहे हो, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं इसमें भी कल्याण छुपा हुआ है, मेरा कहीं ना कहीं इसमें भी उद्धार छुपा हुआ है, ये विश्वास मेरे अंदर में था, इसलिए मेरे मन में कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ। और आप जानते हो कि उनका काटना उसको बचाने का कारण था, अगर वो काटते नहीं, सांप सीधे काट लेता तो वो मर ही जाता। इतनी अनन्यता तुम्हारे और हमारे अंदर में हो तो क्या कारण है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकते। और करते ही एक बात बताओ, वो जब गालियां देते हैं हम लोग, और जो लोग भगवान को, भगवान को जो नहीं मानते हैं, क्या परमात्मा उनका पेट नहीं भरता? क्या आप ये सोचते हो कि वो अपनी मेहनत से कमा करके खाता, भगवान जब चाहे उनकी एक संकल्प से सारी दुनिया इधर उधर हो जाती है, तो क्या भगवान को जो गालियां देता है भगवान उसको खत्म करना चाहे तो समाप्त नहीं कर सकते? लेकिन वे ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। तो उनकी निंदा करने वालों का भी जब वे पेट भरते हैं, उनकी निंदा करने वालों की भी जब वे रक्षा करते हैं, तो उनके जो भक्त हैं, उनके प्रति जो समर्पित हैं, उनकी रक्षा भला क्यों नहीं करेंगे? और आप विश्वास न हो तो करके देखो। महात्मा और शास्त्र हमेशा कहते हैं कि आपके मन में अगर विश्वास भरोसा न हो, इन बातों को अपने जीवन में प्रयोग करके देखो। मैं सुनाया करता हूं और वो भी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक भक्त ऐसे ही कथा सुन रहे थे और महात्मा सुना रहे थे, अनन्य भाव अनन्या चिंतयंतो हम ये जना परिपाषित, गीता में भगवान ने कहा है कि अनन्य भाव से जो चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। योग का मतलब है जिन वस्तुओं का अभाव है उनको इकट्ठा करना, और क्षेम का मतलब है कि जो इकट्ठा की हुई वस्तुएं हैं उनकी रक्षा करना, संभालना। आप मेहनत करके पैसा कमाओगे तो उस पैसे की रक्षा भी आपको करनी पड़ेगी, और भगवान कहते हैं कि तुमको कमाना भी नहीं पड़ेगा, रक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी, दोनों का इंतजाम मैं करूंगा, तुम हमारे प्रति समर्पित होकर के तो देखो। तो कथा कर रहे थे महात्मा ने बड़ी बड़ी बातें की और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि समर्पण करके देखो, परमात्मा रक्षा करता है, तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम कर दे अगर तुम्हारे मन में भरोसा हो, विश्वास हो। एक भक्त के मन में आया कि प्रयोग करके देखना चाहिए कि भगवान खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। तो सोच लिया उसने कि आज घर में रोटी नहीं खाऊंगा, देखते हैं कैसे खिलाएं। घर में गया और श्रीमती जी ने कहा कि भोजन कर लो, बोले नहीं आज भूख नहीं, खाना नहीं। बोले हमने तो तुम्हारे पसंद की मन की सब्जी बनाई और तुम ना बोलते हो। तो सब्जी के लालच में मन भी तैयार हो गया कि ठीक है आज खा लेते हैं, कल से प्रयोग करेंगे। आज क्या जाता है, अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आज ही का जीवन है आखिरी जीवन, प्रयोग कल हो जाएगा। उसने खा लिया। अब कल जब शुरू करना चाहा तो बच्चे जिद पे अड़ गए, आप नहीं खाओगे पापा तो हम भी नहीं खाएंगे। अब आज बच्चों के लिए छोड़ना पड़ा। उस आदमी ने सोचा घर में तो हो नहीं पाएगा, बाहर ही जाना पड़ेगा। घर छोड़ दिया उसने, घर छोड़ के जंगल में गया, और मैंने सुना है कि जंगल में एकदम एक बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर बैठ गया, बरगद के पेड़ के ऊपर, तो घना उस पेड़ के ऊपर जंगल में चारों तरफ कोई नहीं। और मन में सोच लिया कि अगर यहां भगवान खिलाए तो जानू, यहां भगवान आए और रोटी खिलाए तब, क्योंकि यहां तो मेरा परिवार भी नहीं जानता, कोई आदमी भी नहीं जानता, और तब भगवान आकर के भोजन करा देते हैं तो मानना ही पड़ेगा, फिर तो कोई चारा ही नहीं है। देखते हैं कैसे खिलाते। बैठा रहा ऊपर, भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। तो एक बार क्या हुआ, उसी दिन वहां से बारात निकली, तो पहले जब विवाह करने के लिए लोग जाते थे तो बैलगाड़ियों से जाते थे, अब तो साधन दूसरे हो गए, गाड़ियां हो गई, तो बैलगाड़ी से जाते थे, समय भी लगता था, तो सब भोजन वोजन की व्यवस्था साथ में लेकर के चलते थे लोग, तो बैलगाड़ियां लेकर के जा रहे थे, बरगद का पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, तो लोगों ने सोचा यहीं बैठ करके हम भोजन करते हैं, तो सब उतरे और वहीं सब पूरी बारात उतर गई, भोजन वोजन सबने किया, और भोजन करने के बाद दोपहर का समय था तो उन्होंने कहा थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, तो भोजन की जो सामग्री बची थी उसको लेके उन्होंने पेड़ के ऊपर टांग दिया और कहा कि फिर जब चलेंगे तब लेके चलेंगे। जब ये लोग जागे थोड़ी देर बाद में बैठ के चले गए, भोजन वहीं छोड़ गए। अब ये देख तो सब रहा था, इसके मन में आया कि जाके खाऊं, तो उसने कहा नहीं, अगर मैंने खा लिया तो फिर ये कैसे साबित होगा कि भगवान खिलाते, ये तो संयोग भी हो सकता है, भोजन तो आ गया, देखो कितनी विचित्र बात है, जंगल में भी भगवान ने भोजन तो पहुंचा दिया, इसमें कोई दो मत नहीं, आ गया है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि ये भगवान ने पहुंचा है, मैं तो ये तब मानू जब मुझे कोई खिलाए, मैं तो यहां बैठा हूं ऊपर। उसने अपने मन पर थोड़ा संयम भी रखा, कंट्रोल भी रखा, नहीं तो हमारे जैसा आदमी हो तो बोले देखेंगे भगवान को बाद में, आज आ गया तो आज तो खा ही लो, कल बाद में देखेंगे। वो बैठा रहा कि नहीं पहले भगवान खिलाएंगे तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाएंगे। उसके बाद में फिर रात हो गई, रात भर बैठा रहा, भोजन वहीं पड़ा है। संयोग की बात कि जिस पेड़ के नीचे वो पेड़ के ऊपर वो बैठा था वही पेड़ डाकुओं का अड्डा था, तो जब भी कहीं वो लोग लूट करके सामान लेकर के आए वहीं बंटवारा करने के लिए बैठे उसी पेड़ के नीचे। उस दिन भी ऐसा हुआ, डाकू लोग आ गए और बंटवारा करने के लिए जैसे ही बैठे तो एक ने कहा कि भूख बहुत लगी आज, बड़े परेशान है हम। तो किसी ने कहा कि यहाँ खाने के लिए कहाँ है, क्या है जो तुम्हारे लिए लाया जाए, व्यवस्था की जाए। किसी की नजर पड़ी, बोले देखो पेड़ पे कुछ टंगा हुआ है। देखा तो उसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ थे, क्योंकि बारात जा रही थी, लड्डू पूरी आदि आदि बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन थे, तो सबके मन में आया कि खाया जाए। तभी डाकुओं के सरदार ने कहा कि एक मिनट थोड़ा रुको तो सही, रात में जंगल में इस पेड़ के ऊपर भोजन है, ये किसने दिया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को पता चल गया है कि हम लोग यहीं पर बंटवारा करते हैं तो भोजन उसने रखा हो और हम भोजन करें जहर मिला हो और हम मर जाएं, ऐसा तो नहीं है। तो दूसरे ने कहा अगर ऐसा है तो फिर वो रखने वाला, भोजन रखने वाला यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसको। ढूंढने लगे तो वो आदमी तो बैठा ही था ऊपर। डाकू ने कहा सरदार मिल गया, पकड़ के लाए कि तुमने भोजन ये रखा। उसने कहा नहीं भाई मैंने नहीं रखा भोजन, इसमें जहर मिला के तुमने रखा। बोले नहीं जहर है कुछ नहीं है इसमें, मैंने रखा ही नहीं है, तो ये भोजन कहां से आया। उसने सारी कहानी सुना दी। बोले ये कहानी तो सब झूठ है, वास्तव में तो भोजन इसने ही रखा है और इसी में जहर मिला के रखा है, हमको मारना है। उसने कहा बिल्कुल जहर नहीं है, लोगों ने इसको खाया है। डाकू ने कहा अच्छा तू खा के दिखा, अगर वास्तव में इसमें जहर नहीं है और तुम्हें पूरा विश्वास है तो तुम खा के दिखाओ। बोले मैं खा नहीं सकता। अब डाकुओं के सरदार ने कहा इसका मतलब है कि इसमें जहर है, तुम नहीं खा सकते हो, भला क्यों नहीं खा सकते हो। तो इसने कहा सही सही बताऊं। बोले बोलो। तो इसने पूरी कहानी बताई कि मैं ऐसा नियम लेकर के बैठा था, भाई मुझे क्या मालूम था कि तुम यहां आओगे, मुझे क्या मालूम था कि लोग यहां आएंगे, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं तो परीक्षण करने के लिए बैठा हूं, भगवान की परीक्षा ले रहा हूं कि वो कैसे खिलाता है। तो ऐसी कहानियों पर कौन भरोसा करता है, कौन विश्वास करता है। सरदार ने कहा खाते हो कि नहीं खाते हो। बोले नहीं खाऊंगा, नहीं तो मारने लगे। जब मारने लगे तो बेचारे को खाना पड़ा और खाते खाते रोने लगा और कहता है महाराज मान गया आपको, अगर रोज तो मैं वैसे भोजन करता ही था, आपके नाम पर छोड़ा तो मुझे मालूम लगा कि मार मार के खिलाते हो। रोज तो वैसे ही खाता था, रोज तो सहज रूप में ही भोजन करता था, आपके नाम पर छोड़ा तो मार मार के खिलाते हो। आप विश्वास करके देखो, ये कहानी है हा? लेकिन सत्य घटना आपके जीवन में भी ऐसी घटित होंगी हा? हमने भी कई बार ऐसा अनुभव किया, आप अनुभव करके देखो कि परमात्मा के ऊपर अगर भरोसा हो, विश्वास हो, समर्पण हो, तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, कल्याण निकलती है, कल्याण जो गीता प्रेस है उसमें आप पढ़ो, न जाने कितने अनुभव आपको आज के युग में भी ऐसे सुनने को मिलेंगे कि लोगों ने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, सारी जिम्मेदारी डाल दी, कोई काम नहीं हो रहा है, किसी काम से वो परेशान है, तो सब कुछ हो गया, सब कुछ समाधान हो गया, कोई परेशानी रही नहीं। तो अनन्य भाव, हम हमारे मन में अनन्यता पैदा नहीं होती, हम भगवान को दोष देते हैं, हम कहते हैं परमात्मा ने ये किया नहीं। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके तो देखो सारे दुख चुटकी बजाती समाप्त न हो जाए, तो देखना। नारद जी कहते हैं कि तुमने कहानियां सुनी है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ और उस समय भगवान ने आकर के उनको बचाया, भगवान ने उनकी रक्षा की, ये सारी दुनिया इस कहानी को जानती है। तो नारद जी ने कहा तुम एक बात बताओ हमको कि जिन द्रौपदी के चीरहरण से रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी, क्या अभी भगवान कृष्ण मर गए हैं, इतना बता दो हमको, भगवान कृष्ण खत्म हो गए क्या, ये नारद जी पूछ रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि जिन्होंने द्रौपदी को बचाया था आज वो भगवान खत्म हो गया, समाप्त हो गया, आज भी है वो, दिखाई नहीं पड़ता तो क्या हुआ। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी की जब रक्षा किया तब भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तब भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने रक्षा किया, बचा लिया, आज भी वो यहाँ है, तुम बुला के तो देखो, तुम्हारे अंदर में द्रौपदी की पुकार तो आए, तुम्हारे अंदर में वो भाव तो आए कि प्रभु आज हमारा बस तुम्हारे बिना कोई नहीं है, तुम ही हमारे सहारे हो, तुम ही हमारे आश्रय हो, ये पुकार तो हो। ये जो हमारे अंदर के भावों के अंदर में कपटता छिपी हुई है, हमारे मन के भावों के अंदर में जो कहीं अविश्वास की परत दिखाई पड़ती है, हम भगवान से कहते हैं कि तुम हमारी रक्षा करो तब हम तुमको माने, भगवान कहते हैं कि तुम हमको मानो तो सही, रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। भगवान की भी एक शर्त है, तुम कहते हो कि हम तब मानेंगे जब हमारा काम बने, और भगवान कहते हैं कि तुम हमको मान के देखो तुम्हारे सारे काम बनेंगे, बस अंतर यही है, झगड़ा इसी बात का है, हम उस परमात्मा से मुठभेड़ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां योग क्षेम वहाम्यम, क्या है यही है ना, हाँ ये चिंता परिपास होते तेषाम, हाँ तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम, ये तो वहां मैं योगक्षेम की रक्षा करूंगा, तुम्हारे अंदर में अनन्य भाव पैदा तो हो, तुम ये तो कहो कि प्रभु तुम्हें छोड़ करके अब कोई नहीं, तुम्हें छोड़ करके अब हम किसी को नहीं जानते, तुम्हें छोड़ करके अब हमारा आश्रय और सहारा कोई नहीं, बस परमात्मा तो वहीं खड़ा है, वहीं पर बैठा हुआ है और प्रकट होकर के तुमको बचा लेगा, तुम्हें गिरने ही नहीं देगा, हमेशा उसके सहारे तुम्हारे अपने हाथ वो आगे किए बैठा है कि तुम्हारा कहीं पतन न हो जाए, तुम कहीं गिर न जाओ, और हर जगह हर स्थिति में हर परिस्थिति में वो तुम्हारा सहायक है, चाहे वो स्थिति व्यवहारिक हो, चाहे वो स्थिति आध्यात्मिक हो, परमार्थिक हो। आप ऐसा मत समझना कि अनन्यता का कारण सिर्फ आध्यात्मिकता में ही घटित होता है, अनन्यता का भाव और उसका परिणाम सिर्फ आध्यात्मिकता में ही मिलता है, मैं कहता हूं कि सारी जिंदगी का भार वो सहन करने वाला है। एक बात सोचो जरा, सारी प्रकृति को, सारे संसार को जो चलाता हो वो तुम्हारे एक आदमी का तुम्हारा भार नहीं ले सकता, वो ढो नहीं सकता। अनन्या चिंतयन्तो मां यहां मई अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां, आपके अंदर में भाव हो, भावना हो, करके तो देखो, लेकिन हम ऐसी ऐसी बातें उलझ जाते हैं छोटी छोटी बातों में और संसार की बातों में कि अविश्वास भी पैदा हो जाता है कि हम पूजा कर रहे हैं अच्छा भाव में, बहुत बढ़िया है, आपने सत्संग सुना तो मन में आया कि नहीं नहीं भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, भगवान बहुत बढ़िया है और परमात्मा सबकी मदद करता है, यहाँ बैठ करके आपको भरोसा भी हो गया, आपने मन में निश्चय भी ठान लिया कि नहीं हम करके देखेंगे, परमात्मा सब बचा लेगा, रक्षा कर लेगा, लेकिन घर जाते हो परिस्थितियां ऐसी सामने आती हैं जब लगता है कि काम नहीं बनेगा, और तब आपको लगता है भगवान को बाद में देखेंगे, पहले ये दुनियादारी देख ले, तो परिस्थितियां, तो क्योंकि हमारे मन में वो दृढ़ता नहीं आती, दृढ़ भाव पैदा नहीं होता, आज हम कुछ सोच रहे हैं और अगले ही क्षण हमारे उस दृढ़ता में कुछ परिवर्तन होने लगता है, एक समय कुछ परिवर्तन होता है, दूसरे समय पर ज्यादा परिवर्तन होता है, और तीसरे समय हो सकता है कि अगर कोई आदमी आ जाए सामने और बोल दे भगवान अगवान कुछ नहीं, कहां तुम माला लेकर के बैठे हो, बेमतलब दुनिया में कुछ काम करो तभी तुम्हारा पेट भरेगा, तो हमारा मन भी कहने लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है कि परमात्मा दिखाई तो दे नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा लोग जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी ही हो और हम उसके ऊपर भरोसा किए बैठे रहे और हो कुछ नहीं, हम परेशान हो जाए, और जहां मन के अंदर में ये अविश्वास पैदा हुआ और हम गिर गए तो खत्म। अब परमात्मा का कहां दोष है, दोष तो हमारे होते हैं, गड़बड़ियां तो हमारी होती है। एक बार क्या हुआ, मैंने सुना है एक महात्मा से कि वास्तविकता ये है कि परमात्मा तुम्हारी मदद करने के लिए हर क्षण तैयार है, भगवान तुमसे ज्यादा परेशान है। शास्त्रों में आता है कि अगर आप एक कदम भगवान की तरफ चलते हो तो भगवान चार कदम तुम्हारी तरफ दौड़ते कि जल्दी मिल जाए। बेटा तुमने देखा होगा, छोटा सा बेटा, और वो अगर अपने पैरों से चल करके दौड़ करके माँ के पास आना चाहे तो माँ को लगता है कि कहीं दौड़ रहा है गिर न पड़े, तो वो दो कदम और बढ़ करके आगे और उसको पकड़ लेती है। देखा है आपने, ऐसे ही भगवान है कि जब छोटा सा बच्चा साधक और भगवान की तरफ दौड़ता है तो भगवान को लगता है कहीं गिर न पड़े और वो खुद दौड़ते हैं और उसको उठा पकड़ने के लिए। लेकिन गड़बड़ ये हो जाता है कि तब उस बच्चे को ये अभिमान आ जाए कि तुम हमको पकड़ रहे हो, हमको खड़ा होना आता है, हमको दौड़ना आता है, और विपरीत दौड़ना शुरू कर दो तो माँ भी क्या करे बेचारी, माँ भी क्या कर सके जब विपरीत ही भागने लगे। मान लीजिए कि थोड़ा झगड़ा हुआ हो बच्चों में, बेटे और माँ में झगड़ा हो गया, अब बेटा आना चाहता है तो माँ तो उसे तुरंत स्वीकार करेगी, लेकिन जैसे ही माँ ने स्वीकार किया उसने कहा अच्छा ठीक है तो वो तुरंत दूसरी तरफ भागना शुरू कर दे तो माँ को दुखी होगा कि अरे हमने तो सोचा था कि शायद ये दौड़ आया है, हमने तो सोचा था कि शायद ये हमको पकड़ना चाहता है, लेकिन नहीं अभी भी इसके मन में दुख है। तो कोई बात नहीं, आएगा एक न एक दिन तो आएगा, माँ को भरोसा लेके माँ बैठ जाती। ऐसे ही भक्त के प्रति है कि भक्त दौड़ता है, भगवान भी दौड़ते हैं, लेकिन तभी भक्त के मन में अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है, अविश्वास का पर्दा खड़ा हो जाता है, तो भगवान भी सोचते हैं कोई बात नहीं एक न एक दिन तो ये दीवार गिरेगी, एक न एक दिन तो ये पर्दा टूटेगा गिरेगा और तब वो भक्त हमको मिल जाएगा। हमारे कर्म भी बाधा बनते हैं, हमारे संस्कार भी बाधा बनते हैं, हमारे हम ये जो साधक हैं, साधकों साधक लोग किसी एक चीज से ही मुकाबला नहीं करते हैं, यहाँ जीवन भर की लड़ाई है। हर क्षण प्रतिक्षण आप ऐसा मत समझ लेना कि आपका मन अगर एक घंटे के लिए परमात्मा में लग गया है तब ये कभी धोखा नहीं देगा। ये जीवन भर की लड़ाई है, ये हमेशा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आप संसार को सत्य मान रहे हो, जब तक कि आप संसार को सुख देने वाला मान रहे हो, जब तक कि आपके मन के अंदर में या हमारे भाव के अंदर में, हमारे निश्चय के अंदर में संसार के प्रति समर्पण जब तक बना हुआ है तब तक वो झगड़ा ये युद्ध हमेशा आपको लड़ना पड़ेगा। और जहां आपने ये सारी दीवार गिरा दी कि संसार का अस्तित्व है ही नहीं, मान लिया कि संसार में सुख नाम की चीज है ही नहीं, ये जहां स्वीकार कर लिया उसके बाद में लड़ाई की कोई संभावना नहीं रहती। ये युद्ध, ये साधना, ये तत्परता, ये समर्पण, ये तभी तक ये शब्द है जब तक कि संसार के अस्तित्व का भान हमारे चित्त में विश्वास पूर्वक बैठा हुआ है। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, भाव निश्चय करना पड़ेगा। मय अनन्यन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां, परमात्मा का चिंतन करो। दो बातें हुई, एक तो अनन्यता और दूसरी बात भक्ति की दृढ़ता। तो अनन्य भाव तो ठीक है, समझ में आया कि सिर्फ मात्र परमात्मा को चाहना, भगवान को चाहना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना। शायद एक चीज और समझ में आया आपको अनन्यता से कि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि संसार के काम मत करो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भोजन मत करो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम सब कुछ छोड़ दें। देखो छोड़ करके कहाँ जाओगे, तब भी भटकाव रहेगा कहीं ना कहीं और हमेशा और हर जगह। अनन्यता का मतलब हमें एक बहुत बढ़िया समझ में आता है कि जहां हो, जैसे भी हो और जो भी कर रहे हो परमात्मा के लिए करते जाओ, ये अनन्यता है। तुम भोजन करते हो कुछ गलत नहीं, भोजन करना ही चाहिए, लेकिन भोजन किस लिए कर रहे हो, शरीर के लिए, दुकान नहीं, नहीं भगवान के लिए। ये फर्क हो जाएगा, ये भावना ही आपका समर्पण हो जाएगा। गोपियां भी भोजन करती हैं। मैंने सुना है कि उद्धव जी जब जाने लगे ब्रज में तो भगवान ने कहा कि ब्रज गोपियों को हमारा संदेश देना, ये हमारा स्मरण करती हैं, याद करती हैं, रोती हैं, दुखी हैं। उद्धव जी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या, इतने दिन गुजर गए, इतना समय बीत गया, ब्रज की गोपियां आज भी याद कर रही होंगी भगवान को, भरोसा नहीं हुआ। और जब ब्रज में पहुंचे तो सबको खुश देखा, सबको प्रसन्न देखा, सब अपना काम कर रही है। तो ब्रज उद्धव जी को विश्वास हो गया कि देखो मैंने सही कहा था, भगवान को झूठा भ्रम है कि गोपियां अभी भी याद करती है, भगवान फालतू में रोते हैं, गोपियों में कहां है, देखो सामान्य जीवन जी रहे, सब भोजन कर रही हैं, सब अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, सब अपनी गायों को देख रही हैं, घर को साफ कर रही हैं, बड़ी मस्त है। और मैंने सुना है कि नंद बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा गोपियां तो ठीक लगती, गोपियों के मन में तो ये कभी याद करती होंगी, हमें लगता ही नहीं भगवान वहां बावरे हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, ये गोपियां, इनका भाव, इनका प्रेम, इनका समर्पण तुम्हें पता नहीं है। जब मैं वापस लौटा था, जब मैं वापस आया था मथुरा से, तो तुम्हें मालूम है कि जब भगवान यहां से गए थे और जिस भाव से और जिस मुद्रा में मैंने उनको देखा उसी वही मुद्रा थी जब भगवान को विदा करते समय पर उन्होंने ली थी। यानी जैसे भगवान जा रहे हैं और किसी ने हाथ ऐसे किया तो वो बस जब मैं वापस लौटा तो वो ऐसी हाथ किए खड़ी थी। भरोसा नहीं होगा तुमको, लेकिन जिसकी आंख खुली थी उसकी आंख खुली ही रह गई, स्तब्धि भाव को प्राप्त हो गई थी ये गोपियां। और आप भागवत में पढ़ना, वहां भगवान सुखदेव ने संकेत किया है कि जब भगवान गए और गोपियां वहां खड़ी रही तो गोपियों के प्राण तो वहीं से चले गए साथ में, गोपियों के मन तो वहीं साथ में चले गए। और जहां मन ही न हो, प्राण न हो, वहां पर शरीर क्रिया कहां करेगा? हा? मन है ही नहीं, मन चला गया तो ये हाथ जो चलता है ये क्यों चलता है? इसलिए चलता है क्योंकि हमारा मन वहां पर संदेश भेजता है हाथ को उठाने के लिए। जब मन ही हमारा चला गया तो इस हाथ को कौन उठाएगा? इस स्तब्धि भाव को, वृक्ष हो गई, जड़ हो गई। और जब हम आए वापस लौटे, उनकी इस अवस्था को देखा तो हमें बड़ा विचित्र लगा। तो मैंने भगवान कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण कृष्ण कहा, शरीर में संचारी भाव पैदा हुआ, गोपियों की आंखों के पलक झुके और उन्होंने हमारी तरफ देखा, बाबा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को तुम कहाँ छोड़ के आए? मेरी तो बड़ी बुरी अवस्था हो गई। मैंने कहा कि उन्होंने संदेश दिया है कि वे आएंगे। बस जैसा ही कहा, गोपियों ने दोबारा कोई प्रश्न नहीं किया, आएंगे ये उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान ने कहा है तो वे जरूर आएंगे। और बस वे वापस चली गई और अपना काम करने लगी। तो उद्धव जी ने कहा, समझ में नहीं आई बात, काम करने लगी मतलब? बाबा ने कहा, काम करने लगी क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भगवान आएंगे। अब भगवान आएंगे तो ये शरीर जिंदा रखना है, शरीर जिंदा रखना है तो रोटी खानी, घर साफ कर रही है। क्यों? इसलिए साफ कर रही है क्योंकि अगर घर गंदा हो जाएगा तो फिर भगवान आके कहेंगे कि तुमने हमारे घर को गंदा क्यों छोड़ा, तुमने हमारी स्मृति में, भक्त कभी दिखाता नहीं है कोई चीज, उसका चिंतन तो अंदर में हो रहा है। हम सोचेंगे कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो घर को साफ करने की क्या जरूरत है? लोग आए, कोई कहे कि तुम घर नहीं साफ करते हो, बोले भजन से ही फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे भजन किस काम का? भजन से फुर्सत नहीं मिलती घर साफ करने के लिए, लेकिन गोपियों से सीखो। गोपियां कहती हैं कि घर साफ करते हैं हम इसलिए क्योंकि घर में भगवान बैठे हैं, ये भगवान का घर है। तुम अपना घर समझोगे तो गंदा रख सकते हो, लेकिन भगवान का घर समझ करके तुम गंदा कैसे रख सकते हो? संसार के प्रत्येक कर्म को आप साधना बना लीजिए, आप भजन बना लीजिए, वही कर्म तुम्हारी साधना हो जाए, भजन हो जाए, तब आप समझो कि वो भक्ति है, तब आप समझो कि वही अनन्यता है। कैसे करें, कोशिश करूंगा कल और बताने की। एक छोटा सा भजन है, आप लोग प्रेम से गा लीजिए।
ओ बांके बिहारी अब देना सहारा, ओ बांके बिहारी अब देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन। ओ बांके बिहारी अब देना सहारा, ओ बांके तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, तेरे सिवा मन में, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती है तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती है तू ही किनारा, बांके बिहारी अब देना सहारा, ओ बांके बिहारी तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, तेरे रास्ते से, तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, तेरे रास्ते हटाती ये दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती ये दुनिया, इशारों से बुलाती ये दुनिया, मैं देखूं मैं हरगिज जगत का इशारा, मैं देखूं जगत का इशारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा कहीं छूट, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको, तेरा नाम मुझको वो प्राणों से प्यारा, तेरा नाम प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, उबा के बिहारी अब देना सहारा, उबा के अब देना सहारा, सुखदेव
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।